सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड लेक्चर नंबर 328 जीव कांड अर्थ संदृष्टि लेक्चर नंबर 28। ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वच्छायाण नमो लोए सौवसाहूण सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्दवरनेमि चन्दमकलंकं गुणरयण भूषणुदयं जीवस्वपरूवणं मोक्षम्। आचार्य कल्प पंडित टोडल में जी द्वारा लिखित सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड का यह हिंदी अनुवाद है। उसमें अभी हम अर्थ संदृष्टि को देखते हुए पृष्ठ संख्या 944 पर आ गए, 944। कल हमने योग मार्गना अधिकार शुरू किया था, संदृष्टि उसके देख रहे थे। उसमें 944 पृष्ठ पर टेबल है, उसमें जो पांच शरीर है उसके समय प्रबद्धों की संदृष्टि हमने देखी थी। औदारिक शरीर के समय प्रबद्ध को स कहा, वैक्रियक के लिए उसको असंख्यात गुणा किया, तो जितने गुणा किया उस असंख्यात का प्रमाण क्या है, तो श्रेणी का असंख्यात भाग। उसके आगे आहारक का उससे भी असंख्यात गुणा है समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध का अर्थ होता है एक समय में बंधने वाले परमाणुओं की संख्या जो अनंत में होती है। फिर भी आहारक वाला जो अनंत है, सॉरी औदारिक वाला जो अनंत है उससे वैक्रिक वाला अनंत असंख्यात गुणा है। वैक्रिक वाला जो है उससे आहारक का अनंत गुणा, अनंत नहीं असंख्यात गुणा है। आगे जो तेजस का और कारमण का, वो अनंत गुणा अनंत गुणा। इसलिए तेजस में वही स को दो बार श्रेणी के असंख्यात विभाग से गुणा करके ख यानी अनंत से गुणा किया, कारमण में और एक ख से गुणा किया। यहां तक तो अपनी बात हुई थी। अब समय प्रबद्ध की जो अवगाहना है उसको हम देखेंगे। हम पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे नीचे से, नीचे का दूसरा, और बाद में ऊपर टेबल में दोबारा देख लेंगे। पुनश्च घनांगुल ऐसा यानी छ, उसको सूच्यंगुल का असंख्यात भाग ऐसा। सूच्यंगुल के लिए दो संख्या लिखते हैं और असंख्यात की वो दो उसकी जो सेनानी है चिन्ह है वो उसके नीचे लिखते हैं। उसका क्रम से 1, 2, 3, 4 और 5 बार भाग देने पर औदारिक आदि के समय प्रबद्ध की अवगाहना का प्रमाण होता है। ये बात ख्याल में लेना है। औदारिक का समय प्रबद्ध छोटा है परंतु उसकी अवगाहना बड़ी है, और आगे आगे वाले का समय प्रबद्ध बड़ा बड़ा है परंतु उसकी अवगाहना और छोटी छोटी होती चली जाती है। क्योंकि शुरू में तो एक ही बार भाग दिया, आगे आगे चलकर दो बार भाग देंगे तो उसकी अवगाहना और कम हो जाएगी। बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो अवगाहना उसका रिजल्ट कम होगा। पुनश्च घनांगुल को यानी छे को सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग का क्रम से 2, 3, 4, 5, 6 बार भाग देने पर औदारिक आदि की वर्गणा के अवगाहना का प्रमाण आता है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? पहले तो कहा था औदारिक के जो समय प्रबद्धि के अवगाहना है उसके लिए घनांगुल को एक बार सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग से भाग दिया था। तो अभी टेबल देखना, औदारिक के नीचे समय प्रबद्ध की जो अवगाहना कही है वो 6 यानी घनांगुल और डिवाइडेड बाय सूच्यंगुल का असंख्यात विभाग। वो असंख्यात सुचंगुल के असंख्यात भाग से एक बार भाग दिया औदारिक के नीचे कहां पर कहां देख रहे आप वर्गणा की देख रहे मैं पहले समय प्रबद्ध की बता रही हूं तो वहां एक दो तीन चार ऐसे हमने सेंटेंस पढ़ा था क्रम से और वर्गणा के अवगाहना के लिए दो से शुरुआत किया यानी दो बार यानी औदारिक के ही वर्गणा के अवगाहना कितनी है तो दो बार सुचंगुल के असंख्यात भाग से भाग दिया घनागुल को वर्गणा की अवगाहना छोटी है तो एक समय प्रबद्ध में अनंत तो वर्गणा होती है और एक एक वर्गणा में अनंत परमाणु होते हैं क्या कहा एक पूरा जो समय प्रबद्ध है उसमें अनंत वर्गणा होती है और एक एक वर्गणा में अनंत यहाँ तो औदारिक के परमाणु होते हैं तो वर्गणा की अवगाहना छोटी है और समय प्रबद्ध की अवगाहना बड़ी है औदारिक के जो वर्गणा की अवगाहना है वो वैक्रिय के समय प्रबद्ध की अवगाहना देखो ऐसा उल्टा हम देखेंगे तो समय प्रबद्ध की अवगाहना में औदारिक के नीचे एक बार सुचंगुल के असंख्यात भाग से भाग दिया वैक्रिक में दो बार दिया आहारक में तीन बार दिया तेजस में चार बार और कारमाण में पांच बार वही बात वर्गणाओं की अवगाहना में जो घनांगुल को दो बार सुचंगुल के असंख्यात भाग से भाग दिया औदारिक के लिए तीन बार वैक्रिक के लिए चार बार आहारक के लिए पांच बार तेजस के लिए और छह बार वहां छह लिखना रह गया घनांगुली उड़ गया वहां से वो घनांगुल डालो वहां पर औदारिक की वर्गणा एक वर्गणा समस्त वर्गणाओं को ले लेंगे तो उसको तो हम उसको क्या कहेंगे एक समय वाले के तो स्पर्धक वाली वो बात अलग है पूरे तो उसका हम सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य सत्व कहेंगे उसको सत्ता में जितनी पड़ी है उसकी बात नहीं यहाँ पर आप वर्गणा में थोड़ी कंफ्यूज हो ये वर्ग वर्गणा वाली वर्गणा नहीं है देखो वर्गणा शब्द अलग अलग जगह आता है जैसे हमने जब अनुभाग देखा था कर्मों का तो एक कर्म परमाणु को हमने वर्ग कहा था जिनमें जिनमें समान अनुभाग था ऐसे परमाणुओं के ग्रुप को वर्गणा कहा था और ऐसे वर्गणाओं की स्पर्धक वगैरह वगैरह गुणहानि होगी वो तो अनुभाग के बारे में बताया था यहां जो बात हो रही है समय प्रबद्ध की हो रही है तो यहां वर्गणा किसको कहना तो जो परमाणुओं का स्कंद औदारिक के शरीर के परमाणुओं का जो स्कंद ग्रहण करते हैं उसको यहां वर्गणा कहा ऐसे एक समय प्रबद्ध में क्या है तो अनंत वर्गणाओं को ग्रहण किया वो अनुभाग वाली वर्गणा नहीं है जैसे हम कहते ना आहार वर्गणा औदारिक शरीर कौन सी वर्गणा से बना है आहार वर्गणा वैक्रिक शरीर आहार वर्गणा आहारक शरीर आहार वर्गणा तेजस शरीर तेजस वर्गणा है ना तो यहाँ भले वो सबकी आहार वर्गणा ही है फिर भी उसमें परमाणुओं की संख्या जो जिस वर्गणा से जिस आहार वर्गणा से औदारिक शरीर बनता है वो शुरुआत वाले कुछ है उसमें परमाणु की संख्या कम है परंतु वो तो अवगाहना बड़ी है आगे वाले ऐसे आहार वर्गणा के जो आगे वाला ग्रुप लेना वर्गणाओं का वर्गणा यानी पुद्गल परमाणुओं का समूह रूप लेना यहाँ पर वर्गणा यानी जिसको हम स्कंद रूप से कहते हैं परंतु एग्जैक्ट स्कंद और वर्गणा एक नहीं है फिर भी यहाँ जो हम औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण करते हैं तो उस वर्गणा के फॉर्म में ग्रहण करते हैं वर्गणा क्या है वो विशिष्ट जाति की औदारिक जाति की जो वर्गणा यानी आहार वर्गणा हम उसको कहते हैं उसमें भी विशिष्ट नंबर ऑफ परमाणुओं का ही वो ग्रुप है परंतु यहाँ अनुभाग से कुछ लेना देना नहीं है अच्छा है आपने प्रश्न पूछा नहीं तो वो कंफ्यूजन चलता इससे ही एक समय प्रबद्ध में अनंत वर्गणा होती है नेचुरली उसके उगाना छोटी होगी, है ना, फिर भी वो उसके असंख्यात विभाग प्रमाण है, अनंत विभाग प्रमाण नहीं हो जाते। एक करेक्शन किया आपने, वहां घनांगुल लिखना रह गया, वो लिखना। अब ये तो हम टेबल का तो हमने पढ़ लिया नीचे, अब लास्ट अंतिम पैराग्राफ। पुनश्च विसरसोपचय के प्रमाण में, ये विसरसोपचय क्या है मालूम है अमोल? सुनाए सुनाए, हाँ, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था, फिर भी आपको मालूम है? नहीं याद नहीं आपको? नहीं प्रेरणा वेद,
कर्म के साथ जो दूसरे अनंत आते हैं।
हाँ देखो, ये है, यहाँ तो जीव औदारिक वैग्रहिक आहारक तेजस या कारमाण के परमाणु ग्रहण करता है, परंतु उन परमाणुओं के साथ स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण अन्य जो परमाणु है, जो हमने ग्रहण नहीं किए, यानी हमारे निमित्त से ग्रहण नहीं हुए हैं, परंतु उसके स्निग्ध रुक्ष गुण के जो पर्याय है, उसके कारण उसके साथ अपने आप मेरी भाषा में चिपके हुए हैं, उसका स्कंद बन गए उसके साथ। हाँ, मेहमान के मेहमान है, हमारे मेहमान नहीं है, यानी उनके साथ वो लगे हुए हैं। तो ऐसे कितने हैं? तो एक एक परमाणु के साथ अनंत अनंत है। औदारिक का अपना विसरसोपचय अलग, हमने तो कर्म के बारे में आपको याद था, ये औदारिक के विसरसोपचय अलग। औदारिक के जितने हम परमाणु वर्गणा वगैरह ग्रहण कर रहे हैं, उसके एक एक के साथ इतने अनंत अनंत वहां पर मौजूद है। वैकृत के भी वैसे ही, आहारक के भी वैसे ही, तेजस भी। एक तो है तेजस शरीर, जो तेजस वर्गणा जो हमने ग्रहण की है, और उस तेजस शरीर के एक एक परमाणु के साथ अनंत अनंत अन्य परमाणु चिपके हुए हैं, तो उसको हम कहेंगे विसरसोपचय। ये जो उपचय यानी जो समूह संग्रह हुआ है, उपचय का अर्थ है समूह संग्रह, हम संचय कहते ना, वैसे ये उपचय। तो यहाँ जो ये उसका संचय हुआ है, वो जीव का उसमें कोई निमित्त नहीं बना है, परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो तेजस शरीर बना है, वो तेजस के परमाणु यानी तेजस वर्गना से तो बना ही बना है, उसके साथ अन्य विसरसोपचय भी वहाँ पड़े हैं। कारमाण का भी ऐसे ही, यानी जो हम देखते हैं ना, जीव परभव में गमन करता है, तो तेजस और कारमाण शरीर उसके साथ जाता है। तो तेजस कारमाण शरीर अकेला जाता है, तो अपना अपना विसरसोपचय के साथ जाता है, और एक परमाणु के साथ अनंत, यानी वो कितना बड़ा होगा उसका, भले अवगाहना उसके बड़ी नहीं हो जाए, उसी जगह में वो स्थित है, फिर भी क्योंकि अवगाहना तो ऐसी है कि एक ही प्रदेश में अनंत अनंत परमाणु स्थित हो सकते हैं। तो यहाँ लिख रहे विसरसोपचय के प्रमाण में, तो विसरसोपचय के प्रमाण के लिए यहाँ एक त्रैराशिक बताएंगे। एक परमाणु, ये प्रमाण राशि, प्र का अर्थ हमने क्या देखा था? प्रमाण राशि। प्रमाण राशि क्या है? एक परमाणु। फल राशि अनंत गुणा जीव राशि मात्र, इसका अर्थ है एक एक परमाणु के साथ कितने विसरसोपचय के परमाणु कितने हैं? जीव राशि से अनंत गुणा। तो जीव राशि के लिए हम 16 मानते हैं, और 16 को ख से गुणा किया, तो ये जीव राशि से अनंत गुणा हुआ। इसको क्या कहा? यहाँ फ क्या लिखा है नितिन भाई? फो का अर्थ क्या है? फो का अर्थ क्या है? फो 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 किसका शॉर्ट फॉर्म है? फल राशि। हाँ, फल राशि। पहले प्र लिखा था, यानी प्रमाण राशि एक परमाणु, और उसके साथ फल राशि क्या है? तो अनंत गुणा जीव राशि मात्र। किसकी बात चल रही है? विसरसोपचय के परमाणु की, यानी एक एक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंत गुणा विसरसोपचय वाले परमाणु है। तो कहते हैं अभी हमारे साथ सत्ता में कितने पड़े हैं परमाणु, उसके साथ अपना अपना विसरसोपचय कितना होगा? तो कहते हैं इच्छा राशि किंचित कम डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबंध। पहले हमने गुणहानि शब्द सुना था, जो समय प्रबद्ध जो हमने देखा है, समय प्रबद्ध का अर्थ क्या है? एक समय में बंधने वाले परमाणु, ऐसे हर समय बनते रहते हैं, और सब तो निकल नहीं जाते, जीव की सत्ता में पड़े भी रहते हैं। तो सत्ता में कितने पड़े रहते हैं? तो कभी भी हिसाब करेंगे तो सत्ता के जो परमाणु है वो कितने होते हैं? तो कहते डेढ़ यानी वन एंड हाफ टाइम्स, डेढ़ गुणहानि गुणित। गुणहानि हम 8 मान लेते, उसकी संदृष्टि 8 का अंक, तो डेढ़ गुणा करेंगे यानी 12, और किंचित कम यानी 12 के आगे माइनस की साइन लिखेंगे, कुछ कम डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध। इतने परमाणु हमेशा सत्ता में रहेंगे। तो एक परमाणु के साथ अनंत जीव राशि प्रमाण विश्रसोप छे, तो डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध जो सत्ता वाला टोटल अपना जो स्टॉक है उसके साथ कितने होंगे? ऐसे हर एक में लेना, औदारिक का अपना, तेजस का अपना, कारमान का अपना। आपका कोई प्रश्न?
जो आपने जीव राशि बताई है,
हाँ
वो तो अनंत ही है।
हाँ, उससे अनंत गुना।
अच्छा, उसके आगे अनंत लगा।
हाँ, 16 के आगे अनंत लगाया, 16 ख लिख दिया। देखो, हम त्रैराशिक लिखेंगे बोर्ड पर, क्योंकि हम यहाँ क्या देखने रह जा रहे हैं कि टोटल विश्रसोपचय कितने हो गए। तो जैसे हम देखते हैं ना, यहाँ त्रैराशिक में जैसे हम कहते बिकॉज यानी क्योंकि, एक परमाणु के साथ कितने परमाणु विश्रसोपचय के हैं, तो जीव राशि से अनंत गुणा यानी 16 ख, 16 भी अनंत है और उससे अनंत गुणा। केवल अनंत लिख के नहीं, कौन सा वाला अनंत? तो जीव राशि से अनंत गुणा वाला अनंत। इसलिए हमारे पास टोटल कितने हैं? तो जो समय प्रबद्ध है उसको डेढ़ गुणहानि से गुणा करेंगे, तो समय प्रबद्ध के लिए स लिखेंगे और डेढ़ गुणहानि के लिए, कुछ कम के लिए 12, कुछ घाटिए ने थोड़ा हीन, उसके लिए कितना होगा? तो यहाँ समय प्रबद्ध भी बढ़ा लिया है, तो केवल स नहीं लिखते हुए यहाँ हम उसको स असंख्यात लिखा है, असंख्यात गुना समय प्रबद्ध लिया, यानी ज्यादा योग से बंधा हुआ। जहां योग ज्यादा होता है, नहीं समझे, ये जो ग्रहण होता है ना शरीर के परमाणुओं का या कर्म के परमाणुओं का, वो क्यों होता है, उसमें क्या निमित्त होता है? योग, योग से होता है ना। तो योग क्या है? आत्म प्रदेशों की चंचलता। तो स्वभाव है कि विभाव है? विभाव है, तो उसमें क्या निमित्त है? विभाव है तो कोई तो कर्म का निमित्त होना चाहिए। हाँ, शरीर नाम कर्म का उदय, औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय में औदारिक के परमाणु ग्रहण हो गए, जिसके वैकृत शरीर नाम कर्म का उदय है उसके वैकृत जाति के परमाणु का ग्रहण होगा। आहारक शरीर कौन बनाएंगे? जिसको आहारक शरीर अंगोपांग का उदय है, उदय किसके होगा? जिन्होंने बांधा है उन्हीं के उदय होगा। तो उनके आहारक शरीर बनेगा जब उदय के काल में। तेजस का कारमान का उदय तो हमेशा चलता है, तो तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से तेजस शरीर के परमाणु का ग्रहण होता है, और कारमान शरीर नाम कर्म के उदय से कारमान वर्गणा का ग्रहण होके कर्म बनते हैं। प्रश्न है? हाँ, किसमें? शरीर के, हाँ शरीर के बंद होने में क्या कहते आप? 11 अंग और 9 पूर्व, वो तो ज्ञान की बात है। अच्छा, अंग, हाँ अंगोपांग मैंने कहा इसलिए आपको ये प्रश्न है, कोई बात नहीं। हाँ, वो जो ज्ञान में जो अंग शब्द आता है वो तो अपने एक एक कोई वॉल्यूम्स है, अलग अलग विषय है, शास्त्र है अलग अलग, तो उसको वहाँ अंग कहा है। जैसे आचार अंग है, सूत्रांग है, अलग अलग उसके विषय भी अलग है। तो वो द्वादशांग यानी 12 अंगों की रचना हुई है जिसमें अपने पूरी जिनवानी गूंथी हुई है, वो अंग अलग। और यहाँ जो कहते हैं ना शरीर नाम कर्म और अंगोपांग, अंग यानी अवयव को भी अंग कहते हैं, और उपांग यानी उसके और सब डिविजन्स जो कुछ है, उंगली वगैरह, या हमारे अंदर कहेंगे तो मेन ऑर्गन्स है, और फिर उसके और दूसरे कोई टिश्यूज वगैरह जो उसके उपांग कहेंगे हम उसके, इस तरह से उसको अंग उपांग। कहीं भी झिझक रखे बिना पूछना, क्योंकि ऐसे सिमिलर शब्द आते हैं और अर्थ बहुत अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं पूछूंगा तो क्या होगा, बिल्कुल ऐसी कोई चिंता मत करना, क्योंकि हमें समझना है। हाँ, आपके निमित्त से सब समझ जाएंगे। तो यहाँ हमने अभी त्रैराशिक देखा, एक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंत गुणा विसरसोपचय वाले परमाणु होते हैं, तो डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध के साथ कितने हो गए, तो इतने विसरसोपचय यहाँ पड़े हैं अंदर। हर एक शरीर का अपना अपना विसरसोपचय अलग होगा। ये मैं फिर पढ़ती हूँ। विसरसोपचय के प्रमाण में, उसका प्रमाण निकलते समय प्रमाण राशि एक परमाणु, उसके लिए प्र एक लिखा, फल राशि अनंत गुणा जीव राशि मात्र, हो इन्हें फल राशि, आगे 16 ख लिखा, 16 जीव राशि है, ख उसके अनंत गुणा है। इच्छा राशि यानी हम किसका निकालना चाहते हैं उसको कहेंगे इच्छा राशि, कुछ कम किंचित कम डेढ़ गुणहानि से गुणित समय प्रबद्ध, ई यानी इच्छा राशि, स के आगे असंख्यात, इसके लिए इसलिए लिखा मैक्सिमम पॉसिबल, हमें वहाँ बड़ाई में बड़ा समय प्रबद्ध लेना था, यानी जहाँ सत्ता में अधिक से अधिक परमाणु है उसको लिया यहाँ पर। वहाँ लब्ध राशि मात्र, लब्ध राशि यानी हमें जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, ये डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध से 16 को गुणा करेंगे, एक से भाग देंगे, तो लब्ध राशि मात्र। विसरसोपचय परमाणुओं का प्रमाण ऐसा, जो इच्छा राशि है सो असंख्यात 12 कुछ कम, उसको 16 फल राशि से गुणा किया, एक से भाग दिया, तो एक का भाग दिया नहीं दिया वहां नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। पुनश्च औदारिकादि शरीरों के, यानी सभी अपने अपने शरीरों के, देखो यहाँ एक अभी टर्मिनोलॉजी आएगी, इन्हें कुछ शब्द आएंगे, इसको कहेंगे उसके पारिभाषिक शब्द है, यही शब्द अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ मीनिंग में होंगे, यही शब्द अनुभाग के प्रकरण में भी यूज होंगे। यहाँ तो हम स्थिति देख रहे हैं, तो स्थिति के प्रकरण में इसका क्या अर्थ होता है वो हम देखेंगे। तो कहते हैं औदारिकादि शरीरों के, यानी पांचों शरीरों के अपने अपने द्रव्य, द्रव्य का अर्थ है उसके टोटल नंबर ऑफ परमाणु। स्थिति, स्थिति का अर्थ है यहाँ निषेक कितने बने उसको स्थिति कहेंगे, नंबर ऑफ निषेक, कितनी स्थिति बांधी उसको स्थिति नहीं कहेंगे, ये इस गणित में, क्योंकि कारमाण शरीर कर्म जो बनता है तो उसकी स्थिति बांधी है, परंतु निषेक कितने बने, तो आबादा को छोड़कर निषेक बने, तो स्थिति में नंबर ऑफ निषेक ले लेंगे हम, उसको स्थिति कहेंगे। गुणहानि, देखो पहला निषेक हमेशा अधिक परमाणु का होता है, ऊपर के दूसरे निषेकों में परमाणु कम होते हैं और कम होते हैं और कम होते हैं, जितने निषेक जाके परमाणुओं की संख्या आधी होती है उतने जो निषेकों का प्रमाण है उसको कहेंगे एक गुणहानि। बहुत अच्छा, तो यह है गुणहानि, अलग अलग शरीरों के गुणहानि का प्रमाण अलग अलग होगा। नाना गुणहानि का अर्थ होता है टोटल नंबर ऑफ गुणहानियां, ऐसे आधा आधा का आधा आधा का आधा, कब तक होगा, जितनी स्थिति होगी उस वहां तक आधे का आधा होता चला जाएगा, तो उसको कहेंगे नाना गुणहानि, नाना अनेक अनेक, हाँ टोटल नंबर ऑफ गुणहानियां। ये कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं टोटल स्थिति 48 समय की है और एक गुणहानि 8 समय की कहेंगे, तो 8 समय के बाद आधा हुआ, उसके बाद और आधा होगा, कितने बार होगा ऐसा, 6 बार होगा ना, 48 डिवाइडेड बाय 8, 6 बार होगा, तो उसको कहेंगे नाना गुणहानि कितनी है, तो 6। दो गुणहानि, एक गुणहानि 8 की है तो दो गुणहानि का प्रमाण 16। एक यहां शब्द आया अन्योन्याभ्यस्त राशि, अभ्यस्त करना यानी गुणा करना, अन्योन्य ने आपस में, अभी जितनी नंबर ऑफ गुणहानियां हैं जिसको हम नाना गुणहानि कहते हैं, अभी हमने कितनी गुणहानि देखी थी, 48 समय की स्थिति अगर देखेंगे और आठ की एक गुणहानि होगी तो छह नाना गुणहानि होगी। तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि कैसे निकालना, छह बार दो संख्या लिखो और आपस में गुणा करो, जितना नाना गुणहानि का प्रमाण है उतने दो लिखकर गुणा करने से हमें अन्योन्य अभ्यस्त राशि आती है। वो अन्योन्य अभ्यस्त राशि का क्या इस्तेमाल करना वो तो गणित अलग है, पहले हमने देखा भी था, पहले हमने ऐसा देखा था, अभी हमने 48 का जो उदाहरण लिया है तो उसमें अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी आती है, तो दो संख्या छह बार लिख के आपस में गुणा करना, तो कितने आए, कितने आए, 64 आए ना, हाँ कुछ कम आए, देखो हाँ। हाँ। हमें ऐसा भी ले, हमें छह निकालना है ना, तो चार प्लस दो छह होते हैं, तो चार जिसका अर्धच्छेद है इसी राशि कौन सी है, 16, और दो जिसका अर्धच्छेद है इसी राशि है 4। अर्धच्छेदों का जहाँ टोटल होती है प्लस होता है वहां उन संख्याओं का गुणकार होता है, 16 चौक 64। यहाँ हम क्या देखने वाले हैं, हम 6400 अगर टोटल परमाणु मानेंगे और अन्योन्य अभ्यस्त 6300 मान लेते हैं और अन्योन्य अभ्यस्त राशि में से एक कम करना, कितने हो गए 63, और उससे 6300 को भाग देंगे तो हमें डायरेक्ट अंतिम गुणहानि का प्रमाण मिलेगा, टोटल द्रव्य 100 आता है। अब यहाँ वो गणित नहीं करना है, केवल अन्योन्य अभ्यस्त राशि क्या है उसको हमने देखा और उसकी संदृष्टि यहाँ हमको देखनी है, हर एक शरीर की अपनी अपनी। अब यहाँ हम टेबल देखते हैं, इनकी संदृष्टियों का यंत्र ने टेबल निम्न प्रकार है, 945 पृष्ठ पर आते हैं, उसका द्रव्य औदारिक का द्रव्य, अभी ये एक समय में ग्रहण किया हुआ द्रव्य यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि एक समय में जो समय प्रबद्ध ग्रहण होता है उसकी निषेक रचना होती है, निषेक रचना का भी अर्थ देखते हम, एक समय में कितने परमाणु ग्रहण होते तो अनंत होते हैं, तो अनंत होते तो उसका क्या होता है, तो हम कहेंगे उसकी रचना होती है, फिर उसमें से कितने चले जाते उसका हिसाब अलग है, तो पहले जिस समय ग्रहण हुआ है उस समय ऐसी जो निषेक रचना बताएंगे हम, यहाँ नीचे बड़ा बताया और ऊपर छोटा बताया है, क्योंकि वो तो एक एक जैसे ही ऐसी रचना होती है, उसको ऐसा ट्रायंगल भी बताते हैं उसको, अभी यथायोग्य समझना इसको। कोई भी शरीर के परमाणु ग्रहण होते हैं तो ग्रहण करते ही उसकी ऐसी रचना बनेगी, वहां पर औदारिक शरीर में, वैक्रियक में और आहारक में, वहां आबाधा काल नहीं होता, कर्मों में होता है, फिर भी स्थिति हम जब कहेंगे तो कर्मों में भले आबाधा है फिर भी इसको छोड़कर वो स्थिति नाम की उसको संज्ञा दी गई है, ये गणित के लिए। अब यहां हम औदारिक के नीचे के सभी देखेंगे, द्रव्य कितना है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ द्रव्य ये पूरे में कितना मिलकर है, क्योंकि एक समय में जितना बंधा था समय प्रबद्ध ये उसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, इतने समय में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आयु के पहले समय में जितने परमाणु ग्रहण होते हैं शरीर के, जीव विशिष्ट आयु बांध कर आया है पूर्व भव से, मान लेते 100 साल की आयु बांध के आया है, तो पहले समय में जितने परमाणु ग्रहण हो गए एक समय प्रबद्ध, उसकी निषेक रचना होगी, तो उसकी निषेक रचना कितने समयों में होगी, 100 साल के जितने समय है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहां हम देखते हैं औदारिक का द्रव्य कितना है, समय प्रबद्ध जितना है, उसकी स्थिति कितनी है, तो यहां जब स्थिति कहते हैं या कोई भी जहां कहते हैं उत्कृष्ट की बात कहते हैं, तो औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति, औदारिक शरीर किसके होता है पहले ये बताओ अमोल, हाँ मनुष्यों के और नारकियों के नहीं और कितनी गतियां हैं। हाँ, देव और नारकी के तो नहीं होता है। तिर्यंश के कौन सा शरीर है? नहीं नहीं, आप संख्या मत बताना, आयु बंत बताना कितनी है, उसके शरीर का नाम क्या है ये हम पूछ रहे हैं। औदारिक। हाँ, तो औदारिक शरीर किसके हैं? मनुष्य के और तिर्यंचों में। मनुष्य और तिर्यंचों में मैक्सिमम आयु कितनी है मालूम है आपको? हाँ, तीन पल्ले। हाँ हाँ, तीन पल्ले है। कहाँ की है? बहुभूमि की। हाँ, उत्तम बहुभूमि। यही बात यहाँ लिखी, देखो क्या लिखा है वहाँ। औदारिक शरीर में द्रव्य कितना है? तो एक समय प्रबद्ध, और स्थिति कितनी है? तो तीन पल्ले। ये सर्वोत्कृष्ट स्थिति की बात है। पहले समय में यदि जीव ग्रहण करेगा इतने परमाणु, तो तीन पल्ले में उसके डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक एक समय में एक एक लॉट। तो एक समय में कितना परमाणु ग्रहण करता है सोचो तो सही, है ना। गुणहानि आयाम, ये औदारिक शरीर का गुणहानि आयाम का अर्थ समझते हैं? ये जो निषेक रचना हुई है कितना बताए वहां गुणहानि आयाम? अंतर्मूर्त, संख्यात आवली उसको कहना, यानी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में वो परमाणु आधे आधे होते चले जाएंगे। औदारिक शरीर के संबंधी जो गुणहानि का आयाम है वो कितना है? अंतर्मूर्त है। तीन पल्ले में अगर कहीं भी हो, हमारी भी 100 साल की आयु है लेके आए हैं, और पहले समय में ग्रहण किया हो, अभी अभी हम ग्रहण कर रहे, अभी मेरी उम्र अभी 65 है, और मान लेते अभी 75 की मेरी आयु बांध के आयु हूं मैं, तो अभी जो वर्तमान में मैं ग्रहण कर रही हूं, तो 10 वर्षों के जितने समय उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें भी गुणहानि का आयाम कितना होगा? अंतर्मोल। गुणहानि का आयाम उसका अर्थ क्या है? कितने निषेक जाके द्रव्य का प्रमाण आधा होता है। नहीं समझे? गुणहानि किसको कहना? हाँ, निषेकों का, यानी निषेकों में नंबर ऑफ परमाणु कितने हैं उसका जहां आधा प्रमाण होता है, उतने जो लंबाई है काल की, समयों में गिनेंगे हम उसको, तो उसको कहेंगे गुणहानि, गुणहानि का आयाम। औदारिक शरीर में कितना है? तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त का लंबाई, गुणहानि का आयाम कहो, लंबाई कहो, नंबर ऑफ निषेक कहो उसमें, क्योंकि एक समय में एक निषेक है।
नहीं,
हर अलग अलग होगा। वैकृत का अंतर्मूर्त, आहार औदारिक का, आहार का अपना अपना।
तीन पल्ले वाला का
वो अंतर्मूर्त सेम है। औदारिक शरीर के गुणहानि जैसे कर्मों में जो होती है गुणहानि, सभी कर्मों के लिए समान होती है। नाना गुणहानियां अलग होगी, जितनी स्थिति बनती है उसके अनुसार नंबर ऑफ गुणहानियां अलग होगी, परंतु गुणहानि का जो आयाम है वो सेम होगा सभी कर्मों में। तो यहां हम देख रहे हैं हर समय में बन रहा है। हाँ, अलग अलग है नहीं, उतना उसका उस समय में बंधे हुए का, बिल्कुल। ये हम एक समय में बंधे हुए का यहाँ हिसाब लगा रहे हैं। सत्ता वाला है वो अलग करेंगे, जी सत्ता की रचना होती है उसका कथन, उसकी जो निषेक रचना है वो अलग होती है। क्या है ना, परंतु यहाँ जो द्रव्य कह रहे हैं वो कौन सा वाला लिया हमने? एक समय प्रबद्ध वाला लिया। टोटल सत्ता का लेंगे तो कैसे लिखेंगे? स असंख्यात मल्टीप्लाइड बाय 12 कुछ कम, और उसका हिसाब ही अलग लगाएंगे, उसमें भी गुणहानि का प्रमाण उतना ही होगा। अब ये गुणहानि का आयाम कितना देखा? औदारिक का अंतर्मूर्त। नाना गुणहानि कैसे निकाली थी हमने? तो टोटल स्थिति डिवाइडेड बाय गुणहानि का आयाम। तो यहाँ कैसे लिख रहे हैं? तीन पल्ले डिवाइडेड बाय अंतर्मूर्त। कहां से आवाज आ रही है? फिर दो गुणहानि, गुणहानि का जो आयाम था अंतर्मूर्त, उसके आगे दो लिखा है मल्टीप्लाइड बाय यानी दो गुना, दो गुना गुनहानि, ये दो गुना। दो गुनहानि का महत्व ऐसा है कि जो प्रथम निषेय होता है उसको दो गुनहानि से भाग देते हैं तो चय का प्रमाण आता है, यानी उसके गणित सॉल्व करने के लिए बहुत सारे, पहले भी हमने देखा था ये टोटल द्रव्यों को निकालेंगे, फिर उसका मध्यधन यानी एवरेज निकालेंगे, उसमें से गच्छ में से एक को माइनस करके आधा करके, वो लंबा चौड़ा गणित है, तो वहां भी वो दो गुनहानि में से उसको माइनस करते हैं, एक कम गच्छ का आधा, और फिर उससे मध्य धन को भाग देते हैं तो डायरेक्ट हमें प्रथम निषेक आता है। और एक है अन्योन्य अभ्यस्त राशि। अन्योन्य अभ्यस्त राशि कैसे आती है, क्या देखा था हमने, जितनी नाना गुनहानि है उतनी बार दो लिख के आपस में गुणा करना। अब यहाँ उत्कृष्ट स्थिति के साथ लिए है, नाना गुनहानि ज्यादा में ज्यादा हो गए तो तीन पल्ल्य को अंतर्मूर से भाग देंगे तो कितनी बड़ी संख्या आएगी, है ना, तो उसको हम दो दो संख्या को उतनी बार लिखेंगे और आपस में गुणा करेंगे तो कितनी आएगी संख्या, तो असंख्यात लोक। अभी आगे वैकिरेक के देखते हैं, हम वैकिरेक के समय प्रबद्ध, हमने जो हमने पहले 944 पृष्ठ पर समय प्रबद्ध का जो कॉलम देखा था वैसे यहाँ औदारिक के समय प्रबद्ध को जगत श्रेणी के असंख्यात भाग से गुणा किया। वैकिरेक की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 33 सागर, तो वहां 33 सागर लिखा है, ये उत्कृष्ट स्थिति लेकर यहाँ बात हो रही है। उसका भी गुणहानि आयाम है अंतर्मूर्त, नाना गुणहानि कैसे निकालेंगे, स्थिति डिवाइडेड बाय गुणहानि आयाम, तो 33 सागर डिवाइडेड बाय अंतर्मूर्त संख्यातावली, दो गुणहानि वैसे निकालेंगे, गुणहानि को दो गुणा करेंगे। अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी होगी, वहां तो पल्लियों में है यहां तो सागरों में है, तो असंख्यात लोग गुणा असंख्यात लोग। आहार का द्रव्य कितना है, उसका जो समय प्रबद्ध है, हाँ दो बार आवली श्रेणी का असंख्यात भाग से गुणा किया था। स्थिति कितनी है, आहारक शरीर कितने काल तक टिकता है, अंतर्मूर्त, तो यहाँ दो बार संख्यात गुणित आवली लिया। गुणहानि का आयाम कितना होगा, यथायोग्य छोटा अंतर्मूर्त, इसलिए इसको एक बार संख्यात गुणित आवली लिखा। नाना गुणहानि कितनी होगी, तो स्थिति डिवाइडेड बाय गुणहानि आयाम, तो संख्यात रहेगी। दो गुणहानि, जो गुणहानि का आयाम दो गुना करो वो दो गुणहानि हुई, और उसके अन्योन्य भाष्य राशि कितनी होगी, तो दो संख्या संख्यात बार लिख के गुणा करो तो वो भी संख्यात गुणा संख्यात हो जाएगी। अब तेजस के, उसका द्रव्य ने उसका समय प्रबद्ध, वो पूर्व आहारक का जो था उससे अनंत गुना है। तेजस की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, तो 66 सागर। ये हमेशा वो स्टोरी याद आती है ना, कर्णानियोग परिचय में ये लिखा था तेजस की उत्कृष्ट स्थिति। तब हम जयपुर गए, उसका विमोचन हुआ पुस्तक का, तो यशपाल जी है ना वहाँ, तो उन्होंने मेरे कहाँ से लिखा, कुछ आगम का आधार है भी क्या नहीं है, तो ऐसी कुछ अटपटी बातें किसी विद्वानों को दिखाना चाहिए फिर लिखना चाहिए पुस्तक, ऐसे बहुत 22-23 उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, प्रश्न चिन्ह, ये कहाँ से लिया करके, तो फिर वो समय ज्ञान चंद्रिका में से लिया है सब, तो उसको मंगवा के आधे घंटे के अंदर उनको पृष्ठ संख्या लिख के सब दे दी, तो इतने खुश हुए थे। तो कहते मैंने इसका संपादन किया, मुझे ये बातें अभी याद नहीं थी, कहो या जो कुछ है, मगर उसमें तो सारा, क्योंकि वो तो पत्र रूप है, उसमें तो हर जगह हर पेज में हर लाइन में लिख नहीं सकते ये इसका आधार है कहके, इसलिए ऐसे आधार रूप बात नहीं लिखी उसमें, तो जब ये 66 सागर आता है तो मुझे वो याद आती है। तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति है 66 सागर। देखो एक बात लेना, ये औदारिक और वैकरिक शरीर एक भाव के लिए, आहारक शरीर तो अंतर्मूर्त के लिए होता है, तेजस शरीर अनेक भवन तक चलेगा, पर इतना नहीं चलेगा जितना कारमान चलेगा, क्योंकि कारमान की तो उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर एक समय में बंधा हुआ, तो वो कितने काल तक कितने भवन तक चलेगा, वो विशिष्ट समय में बंधे हुए की बात चल रही है। को चाहिए वहां पर सा 70 को 2 हाँ, क्योंकि कोड़ा को दो दो है ने दो बार हाँ, नीचे भी का ही लिखा है, ये कैसे को का कैसे हुआ, आगे भी का ही हो गया, 70 को चाहिए, क्योंकि मूल संदृष्टि में भी हमने को लिखा है, को दो लिखा था, जैसे 947 पृष्ठ पर नीचे को दो लिखा है, हाँ जहाँ जहाँ वो, यहाँ पर भी नीचे का दो हुआ है, को दो करना उसको, ये क्या है, कहीं कहीं वो तो ये देखो स्थिति अभी हमने किसकी चल रही थी, तेजस की, गुणहानि आयाम कितना है उसका, तो संख्यात पल्ल डिवाइडेड बाय हाँ 6 माइनस 6 इंटू असंख्यात, अब ये 6 माइनस 6 क्या है, तो 6 का अर्थ होता है पल्ले के अर्धच्छेद, और 6 का अर्थ होता है पल्ले के वर्ग शलाका के अर्धच्छेद, पल्ले के वर्ग शलाका के अर्धच्छेद, तो 6 माइनस 6 और उसको भी असंख्यात गुणा करके ये संख्यात पल्ले को डिवाइड किया है वर्गशलाका के अर्धच्छेद, और दोनों के बीच में ये जो चांद जैसा है वो माइनस की साइन है, इसका अर्थ हम नीचे एक्सप्लेन किया है वहां देखेंगे हा? नाना गुणहानि कितनी है, तो 6 माइनस 6 देखो गुणहानि आयाम जो लिखा है, हम स्थिति को गुणहानि आयाम से भाग देते हैं तो नाना गुणहानि आती है, यहां उल्टा किया, यहां स्थिति को नाना गुणहानि से भाग दिया तो गुणहानि आयाम निकाला था, नहीं समझे, हमारी स्थिति 48 थी और गुणहानि आयाम 8 था, तो नाना गुणहानि कितनी थी, 6। अभी यहां इस पद्धति से बताया है कि हमें गुणहानि आयाम नहीं मालूम है, नाना गुणहानि मालूम है, तो 48 स्थिति है और नाना गुणहानि 6 है, तो एक गुणहानि की वैल्यू कितनी होगी, 48 डिवाइडेड बाय 6 8 होगी, वही होगा ना, 48 को 8 से डिवाइड करते तो 6 आता है और 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 आता है, तो यहाँ नाना गुणहानि मालूम है 6 माइनस 6 इंटू असंख्यात, और उससे स्थिति क्या लिखे, संख्यात पल्य, ये संख्यात पल्य क्यों लिखा, जब अक्षण जी आप कहेंगे, हाँ दिव्या बेन, संख्यात पल्ले क्यों लिखा, कहाँ से निकाला ये संख्यात पल्ले, हाँ 66 सागर है ना, तो एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी, तो 66 सागर में 660 कोड़ा कोड़ी, वो भी संख्यात हुआ, इसलिए संख्यात पल्ले लिखा, 66 सागर के बदले ये संख्यात पल्ले लिखा है, डिवाइडेड बाय नाना गुणहानि, ये एक गुणहानि का आयाम हुआ, नाना गुणहानि कितनी है, हाँ तो पल्ले के अर्धच्छेद में से उसके वर्गशलाका के अर्धच्छेद माइनस करो और असंख्यात से गुणा करो, ये 6 माइनस 6 कैसे आए वो देखेंगे हम कारमान में, उसकी बात और क्लियर होगी। अब दो गुणहानि कितनी है, ऊपर जो गुणहानि का आयाम देखा था उसको दो गुणा कर दो, और अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी आती है, तो क्या लिखा वहां पर, के को जो लिखा है ना, को असंख्यात, असंख्यात कल्पकाल है, को यानी कल्पकाल, असंख्यात कल्प काल के बदले या लिखा है बीच में, और आगे क्या लिखा है? आवली नहीं, वो अंगुल का असंख्यात होगा, क्योंकि अंगुल के असंख्यातवे भाग में असंख्यात असंख्यात कल्प काल होते हैं। यानी इतनी बार दो संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। अब कारमान का भी देख लेते, फिर नीचे का पढ़ेंगे। या यानी और इसलिए उसको बोल्ड में नहीं लिखा, ऑर्डिनरी लिखा है। ये अपने ऑर्डिनरी या शब्द है, दिस या दिस, यानी दिस और दैट, इस तरह से। नहीं 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 नहीं, और ओ आर और अथवा, हाँ अथवा अथवा, या का अर्थ होता है अथवा। अब हम कारमान का देख लेते हैं। कारमान का समय प्रबद्ध, तेजस से भी अनंत गुना। कारमान की स्थिति मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी, उसको लिखते सा 70 और को 2, वो का को करो। उसका गुणानीय आयाम कितना है? अब ये जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर है ना, वो भी संख्यात पल्ल्य है। दोनों की वैल्यू अलग है, तेजस की वैल्यू तो 66 सागर थी और इसकी तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, फिर भी कहेंगे संख्यात पल्ल्य। और डिवाइडेड बाय क्या है वहां? 6 - 6। नाना गुणानी है 6 - 6, दो गुणानी, जो अभी हमने गुणानी आयाम देखा था उसको दो गुना किया। और अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी है? तो वो ऊपर प यानी पल्ल्य और नीचे उसकी वर्गशला का, पल्ल्य डिवाइडेड बाय उसकी वर्गशला का, ये उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि थी कारमान की। अभी यहाँ हम नीचे उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। यहाँ पहले समय प्रबद्ध की संदृष्टि कही थी, वही द्रव्य की संदृष्टि जानने, यानी टोटल द्रव्य एक समय प्रबद्ध का, उसकी बात है यहाँ। पुनश्च स्थिति औदारिक की 3 पल्ल्य यानी प 3, वैक्रीय की 33 सागर सा 33, आहारक की 2 बार संख्यात गुणित आवली मात्र, यानी 2 आगे 2 बार नू नू जैसी साइन, तेजस की 66 सागर सा 66, कारमान की मोह की अपेक्षा, क्योंकि मोहनी कर्म की सर्वोत्कृष्ट है, सागर 70 कोड़ा कोड़ी सा 70 को 2, यहां भी को करना। पुनश्च गुणहानि आयाम औदारिकादि 3 का अंतर्मूर्त मात्र और तेजस कारमान का अपनी अपनी स्थिति संख्यात पल्ल्य प्रमाण, यानी उसका वैल्यू अलग अलग है, अपनी अपनी स्थिति अलग कही। तेजस में तो 66 सागर उत्कृष्ट लिए और वहां तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर लिए, फिर भी उसको उस कथन में क्या होगा? संख्यात पल्ल्य। उसको अपनी अपनी नाना गुणानी का भाग देने पर होता है, यानी स्थिति डिवाइडेड बाय नाना गुणानी इज इक्वल टू गुणानी आयाम। उल्टा भी करते हम, स्थिति को गुणहानि आयाम से डिवाइड करेंगे तो नाना गुणहानि। पुनश्च नाना गुणहानि औदारिक वैक्रिय की अपनी अपनी स्थिति को गुणहानि आयाम का भाग देने पर होती है। आहारक की संख्यात मात्र है, क्योंकि उसके तो दोनों ही अंतर्मूर्त है, इसलिए उसको संख्यात उसका उत्तर आता है। तेजस की पल्ल्य के अर्धच्छेद में 6 में से पल्ल्य की वर्गशलाका के अर्धच्छेद व 6 घटाने की आगे लिखी ऐसी संदृष्टि करके, ये जो माइनस की साइन करके, ये जो चंद्र कोर जैसी है ना, उसको असंख्यात से गुणित करने के लिए आगे ऐसी संदृष्टि यानी असंख्यात की करने पर 6 - 6 × असंख्यात होता है। कारमान की असंख्यात के गुणकार के बिना तेजसवत संदृष्टि होती है 6 - 6। ये तेजस का जो है वो उसे असंख्यात गुणा हो जाती है नाना गुणानी। क्योंकि उसका गुणहानि आयाम छोटा है, तो नाना गुणहानि ज्यादा होती है। पुनश्च
यहाँ एक प्रश्न है, 6 माइनस बच्चे किया संख्या, तो आपने बच्चे को खाली गुना है कि पूरा पूरा ब्रैकेट
पूरे को गुना किया? पुनश्च 2 गुणहानि में जो गुणहानि की संदृष्टि थी उसको 2 से गुणा करने के लिए आगे 2 के अंक की संदृष्टि होती है। पुनश्च अन्योन्य अभ्यस्त राशि की क्रम से यानी औदारिक वैकरिक आहारक आदि की, औदारिक के असंख्यात लोक प्रमाण ऐसी, इससे असंख्यात लोक गुणा वैकरिक की ऐसी यानी असंख्यात लोक आहारक की संख्यात गुणित संख्यात मात्रा ऐसी, तेजस की सुचंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, ये अंगुल की बात है, ऐसी इसका अपवर्तन करने पर यानी उसको अगर हम अंगुल का असंख्यात विभाग को अगर देखेंगे समयों की अपेक्षा, तो कहते हैं असंख्यात कल्पकाल मात्र होती है, इसलिए उसको क कहा, क असंख्यात, उसकी वहीं पर संदृष्टि ऐसी क असंख्यात। कारमान की यानी कारमान की जो अन्य व्यस्त राशि है वो पल्य को वर्गशलाका का भाग देने पर ऐसी यानी पर डिवाइडेड बाय वो, ये उसकी संदृष्टि जानने। यहाँ गुणहानि नाना गुणहानि अन्योन्य व्यस्त राशि में त्रैराशिक आदि विशेष है, वहाँ संदृष्टि सुगम है। यहाँ हरेक के अपने अपने त्रैराशिक बताए हैं, तो वो भी संदृष्टि जब बताई तो वो त्रैराशिक भी समझने में आसान है, क्योंकि अपने अपने गुणहानि आयाम को प्रमाण राशि करके फल राशि एक करके यानी इतने गुणहानि के एक यानी इतने में एक होती है, तो वो अपनी स्थिति में कितनी, जैसे हमने कहा ना 8 के 1 गुणहानि होती है तो 48 की कितनी 6 होगी, ये अपना अपना त्रैराशिक होगा। अपनी अपनी स्थिति को इच्छा राशि करने पर औदारिकादि शरीरों की नाना गुणहानि राशि होती है। इन वाक्यों का अर्थ समझ में आता है? प्रमाण राशि किसको किया? गुणहानि को। इतने के लिए इतनी स्थिति के लिए 1 गुणहानि, तो टोटल स्थिति के लिए कितनी? पुनश्च अपनी अपनी नाना गुणहानि राशि को प्रमाण राशि करके, अब अपना नाना गुणहानि हम 6 मान लेते हैं ना, फल राशि अपनी अपनी स्थिति करके यानी जब 6 नाना गुणहानि है तो टोटल स्थिति 48 होती है, इच्छा राशि 1 करने पर तो 1 के लिए कितनी होगी? औदारिकादि शरीरों के गुणहानि आयाम होता है, तो हमें उत्तर आ जाएगा 8। तो यही उल्टे पद्धति से बताए कि यहाँ प्रमाण क्या किया, पहले त्रैराशिक में औदारिक के लिए गुणहानि का प्रमाण अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त में 1 गुणहानि होती है, तो इच्छा टोटल स्थिति कितनी है? मैक्सिमम हमने देखी 3 पल्ले, उसमें कितनी होगी नाना गुणहानि? तो पति डिवाइडेड बाय अंतर्मूर्त जो पहले हमने देख ली थी, इस टेबल में लिखा है ना, यहाँ पर ये पीछे के 945 पृष्ठ पर लिखा हुआ है, देखो पोतीन डिवाइडेड बाय अंतर्मूर्त नाना गुणहानि। ऐसे वैकरेक के प्रमाण गुणहानि का प्रमाण लिखना, अंतर्मूर्त में फल 1 होता है तो 33 सागर में कितना होगा? तो 7/33 डिवाइडेड बाय अंतर्मूर्त, ये उसके नाना गुणहानि होगी। आहारक में वो संख्यात आवली में 1 होगा तो 2 बार संख्यात गुणित आवली में कितना होगा? तो संख्यात होगा। तेजस में उसका गुणहानि का प्रमाण 66 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 × असंख्यात, उसमें 1 होगा तो 66 सागर में कितना होगा? तो इससे इसे गुणा करेंगे हम तो 6 माइनस 6 रह जाएगा, यानी इच्छा से फल को गुणा करते हैं और प्रमाण से भाग देते हैं, भाग देना है उल्टा करके गुणा करेंगे है ना, तो वो 7/7 66/66 कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा। कारमान में 70 का दो, यहाँ भी का दो हो गया, मूल में देखना पड़ेगा का लिखा था क्या, क्या है को दो चाहिए, और डिवाइडेड बाय 6 माइनस बच्चे में एक गुणहानि होती है, तो इच्छा राशि 770 को दो में कितनी होगी, यहाँ भी को दो करना, 6 माइनस बच्चे हो गए। अब इसको उल्टा फिर करेंगे, गुणहानि को प्रमाण किया, ये उल्टा हुआ, प्रमाण में नाना गुणहानि है और लब्ध में गुणहानि है, ये वो वैसे ऊपर के वैसे ही नाम डाल दिए, प्रमाण में नाना गुणहानि लिखना, क्योंकि यहाँ नाना गुणहानि की बात लिखी है सर्वत्र, और लब्ध में नाना निकाल दो, गुणहानि है, अभी उल्टा द्रे राशि करना कि इतनी गुणहानि में, इतने नाना गुणहानि में इतनी स्थिति है, तो एक गुणहानि में कितनी होगी, तो एक गुणहानि का प्रमाण मिलेगा, जो ऊपर प्रमाण में लिखा था अभी वो लब्ध में आ गया, ऊपर देखो ना प्रमाण में गुणहानि लिखा था ना, और लब्ध में नाना गुणहानि लिया था, अब यहाँ प्रमाण में नाना गुणहानि लिया है तो लब्ध में गुणहानि आ जाएगी, ऊपर के साथ कंपेयर करो, वैक्रेक के जो लब्ध था वो यहाँ प्रमाण लिया, तो गुणहानि का प्रमाण मिला हमें एक अंतर्मुख, आहारक को संख्यात ही लिया था, उसके गुणहानि का प्रमाण संख्यात आवली आया, तेजस का 6 माइनस वचे सिंटू असंख्यात लिया था, उसकी गुणहानि का प्रमाण आया 66 सागर डिवाइडेड बाय 6 माइनस वचे इंटू असंख्यात, कारवाण के नाना गुणहानि 6 माइनस वचे थी तो उसकी कितनी आई, 770 को दो, एक का दो ने को दो 6 माइनस बचे, अभी हम तो यहीं रुकेंगे कि उसके आगे जो कुछ अन्योन्य वृष राशि वगैरह वगैरह जो बात बताएंगे वो कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। अमूल।